हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। स्वीटी के चले जाने के बाद आदित्य सुनैना की ओर देखता हुआ बेड के सामने पड़े सोफे पर बैठ गया। उसने अपना कोट उतारकर सोफे के किनारे रख दिया और सुनैना की ओर देखते हुए कुछ सोचते हुए बोला, स्वीटी को यहाँ रुकने की अनुमति तुमने क्यों दी? तो क्या बोलती मैं? मुझे क्या पता था कि अनुमति देनी है या नहीं? वो तो खुद ही अपनी माँ के साथ आ गई थी। आदित्य की बात सुनकर सुनैना थोड़ी रूखे लहजे में जवाब दिया, अच्छा, चाची भी आई थीं क्या? और कौन आया था उनके साथ? पक्का उन्हें पता चल गया होगा कि मैं घर पर नहीं हूँ, इसलिए ठीक है, मैं बात कर लूँगा उनसे। सुनैना की बात सुनकर आदित्य थोड़ा सोचते हुए बोला और सुनैना के व्यवहार पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक बात बताओ जरा, तुम्हें इंसानों से समस्या क्या है? अपने आसपास लोग अच्छे नहीं लगते क्या तुम्हें? क्या हो गया अगर स्वीटी यहाँ रह लेगी? इतना बड़ा घर है और नाम के दो तीन लोग ही रहते हैं। सुनैना आदित्य की ओर देखकर उसकी आंखों में झांकने की कोशिश करते हुए पूछी। आदित्य उसकी नजरें चुराते हुए इधर उधर देखकर बोला, नहीं, कुछ नहीं, मुझे क्या समस्या होगी? मुझे ऐसी कोई समस्या नहीं है। और यहाँ तुम हो ना मेरे साथ, तुम क्या इंसान नहीं हो? हाँ, मैं तो हूँ, मतलब तुमने खुद ही मुझसे शादी की है तो अब मैं तो रहूँगी ही। लेकिन आदित्य की बात सुनकर थोड़ा सोचकर बोलते हुए सुनैना इतना ही बोली और चुप हो गई। आदित्य ने भी बात आगे नहीं बढ़ाई और थोड़ी राहत की सांस ली, क्योंकि उसे लगा था कि सुनैना के इस तरह पूछने पर वो कुछ और ही बोल दे। तुम्हें कोई मदद चाहिए तो बता देना, मैं यही हूँ, सुनैना को बेड पर लेटने की कोशिश करते हुए देख आदित्य बोला, नहीं, कोई मदद नहीं चाहिए तुम्हारी। और बोला था ना मैंने कि पहले तुम खुद को संभाल लो और होश में रहो, उसके बाद ही मेरी या किसी की भी मदद कर पाओगे। आदित्य की बात पर सुनैना फिर से उसे उसके शराब पीने वाली बात का इनडायरेक्टली ताना मारती हुई बोली और जैसे तैसे करके आखिरकार बेड पर लेट गई। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, यहाँ मदद करने को बोलो तो भी ताना ही सुनने को मिलता है। आदित्य एक ठंडी सांस भरते हुए बोला, अरे ठीक हूँ मैं, बस मेडिसिन की वजह से नींद आ रही है इसलिए लेट गई, और ताना नहीं मार रही, बस जो सच है वही बोल रही हूँ। आदित्य की बात सुनकर सुनैना लेटे लेटे ही बोली। आदित्य ने उसके बाद कुछ नहीं बोला और वहीं सोफे पर पैर ऊपर करके आराम से टेक लगाकर बैठ गया। उसने अपना सिर सोफे के एक तरफ टिका लिया। दवा के असर की वजह से सुनैना कुछ ही देर में सो गई, लेकिन आदित्य काफी बेचैन था। उसके मन में इस वक्त कई सारी बातें चल रही थीं और वो काफी कुछ सोच रहा था। नींद उसे वैसे भी जल्दी नहीं आती थी, इसलिए जब उसे लगा कि सुनैना पूरी तरह से सो गई है तो उठकर वो फिर से ड्रिंक करने लगा। कुछ ही देर बाद ज्यादा नशे में होने की वजह से वहीं सोफे पर बैठे बैठे उसकी भी आंख लग गई। पार्ट वन, विराज और सुनैना का जन्मदिन। विराज सुनैना के जाने के बाद अकेला ही घर वापस आ गया। उसने अवंतिका को होटल में ही छोड़ दिया था। घर में सब मिलकर अवंतिका का जन्मदिन मना रहे थे, लेकिन विराज अपने कमरे में अकेला था। उसे सुनैना की वो बात बार बार याद आ रही थी कि वो शादीशुदा है। ये सोचकर विराज को काफी बुरा लगा और वो अपने कमरे में लगे पंचिंग बैग पर घूंसे मारने लगा। सुनैना के बारे में सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो जोर से चिल्लाया, लेकिन उसने पहले ही अपने कमरे में म्यूजिक फुल वॉल्यूम में चला रखा था, जिससे उसकी आवाज बाहर नहीं जा पा रही थी और किसी को भी विराज की हालत का अंदाजा नहीं हो रहा था। अवंतिका विराज को अपने जन्मदिन के लिए कई बार बुलाने आई, लेकिन वो तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर कमरे का दरवाजा नहीं खोला। अवंतिका को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि विराज ऐसी हरकतें बहुत कम करता था। आज तो अवंतिका का जन्मदिन भी था और उसके बावजूद बाहर सबके साथ आने से मना करना अवंतिका को और भी ज्यादा खटक रहा था। वो वहाँ से चली गई। नहीं, इतनी आसानी से तो नहीं भूलने वाला मैं सब कुछ, और ना ही तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला सुनैना। मुझे लगता है कहीं ना कहीं तुम भी मुझे पसंद करती हो, और मैं तो तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर तुम्हें तुम्हारी उस जबरदस्ती की शादी से आज़ाद करवाना कौन सी बड़ी बात है? पंचिंग बैग पर काफी देर तक घूंसे मारकर अपना गुस्सा और निराशा निकालने के बाद विराज पसीने से तरबतर हो गया। फिर उसने पंचिंग बैग को दोनों हाथों से पकड़कर अपने मन में ये बातें सोचते हुए खुद से बोला। ये फैसला करने के बाद उसने तौलिया उठाकर अपना पसीना पोंछा और बेड पर बैठते हुए साइड टेबल पर रखा अपना मोबाइल फोन उठाकर किसी का नंबर डायल करने लगा। अगली सुबह नैना का प्लान। नैना की सुबह अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट थी, इसलिए वो समय से पहले ही तैयार हो गई। उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उसने सोचा कि सोने से अच्छा है कि पैकिंग कर ले और ठीक तरह से तैयार हो जाए। सुबह 5 बजे नकुल उसे लेने उसके फ्लैट पर आया और तब तक नैना बिल्कुल तैयार थी। नकुल उसे देखकर प्रभावित हुआ और उसकी तारीफ करते हुए बोला, ओ वाओ, इतनी सुबह सुबह इतनी जल्दी और इतने अच्छे से तैयार हो गई। मुझे देखो, बस नींद से उठकर कोट पहनकर चला आया हूँ। हाँ, मैं रात भर सो नहीं पाई, इसीलिए आराम से समय मिल गया तैयार होने और पैकिंग करने का, नकुल की बात पर नैना ने बताया। वे दोनों नैना की बिल्डिंग की लिफ्ट में आ गए और फिर लिफ्ट से पार्किंग लॉट में गए, जहाँ नकुल की कार खड़ी थी। अरे क्यों, क्यों नहीं सोई तुम रात भर? ऐसा क्या हो गया? कोई समस्या है क्या? नैना की बात सुनकर नकुल ने उसे बताते हुए कहा, क्या हुआ, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ। कार में बैठने के बाद नैना के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए नकुल ने पूछा। नैना थोड़ी सोच में पड़ गई कि वो नकुल को उन कॉल्स और मैसेजेस वाली बात बताए या फिर रहने दे, और फिर नकुल भला इन सब में उसकी क्या मदद कर पाएगा। वो अब उसके साथ काम भी कर रही थी, ये सोचकर वो उसे ज्यादा बातें नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि शायद इन सब की वजह से नकुल उसे अपने प्रोजेक्ट से भी हटा सकता था। हाँ, वो मेरी बहन है ना सुनैना, उसका एक्सीडेंट हो गया है कल ही, मुझे पता चला और शाम को उससे मिलकर वापस आई। बस तब से ही थोड़ी टेंशन, और फिर सुबह तुम्हारे साथ जाना भी था तो उस वजह से भी थोड़ी नर्वस थी मैं। बस यही सब सोचकर नींद नहीं आई मुझे रात भर, नैना ने नकुल को पूरी बात बताई। एक्सीडेंट वाली बात सुनकर नकुल के चेहरे पर जैसे हवाइयाँ उड़ने लगीं और उसे काफी कुछ याद आ गया। बाकी बातों पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया और कार स्टार्ट करना भी भूल गया। नैना ने अपना हाथ हवा में लहराते हुए बोला, क्या हुआ, कहाँ खो गए, लेट हो जाएंगे हम फ्लाइट के लिए, चलो। हाँ हाँ, चलते हैं, नैना की बात सुनकर नींद से उठे हुए जैसे बोला। उसके माथे पर पसीने की बूंदें नजर आने लगी थीं, लेकिन नैना अपनी ही टेंशन में थी, इसलिए उसने नकुल पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ ही देर में वे दोनों एयरपोर्ट पहुँच गए। क्रमशः